नमस्कार, मैं प्रयोग पाणिग्राही आप सभी को रेडियो केवीके के नवे अध्याय में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 8वीं का छात्र अर्णव को कि वह आए और श्लोक वंदना करे।
नाम त्रीणी रत्नानी जलमनम सुभाषितम मूढ़े है पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, अन्न एवं अच्छे वचन। मूर्खों को लगता है कि पत्थर भी रत्न है। मेरा दूसरा श्लोक, न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानम्। अर्थात ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, ना भाइयों के बीच बांटा जा सकता है और ना ही इसका कोई भार है। इसे दैनिक संचार करना चाहिए और जो विद्या का धन होता है वह सारे धनों में प्रधान धन होता है।
धन्यवाद अर्णव। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्राथमिक विभाग के नन्हे मुन्ने बच्चों को कि वे आए और एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत करें।
दिखाएं जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो
धन्यवाद बच्चों। अब मैं प्रयुक्त पाणिग्रही आपके सम्मुख इस तिरंगे के ऊपर एक कविता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे देश के स्वतंत्रता को बजाय रखने के लिए हमारे वीर सैनिक सदा जागृत रहते हैं। वे सब भारत माता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे जब भी भारत माता की रक्षा करने के लिए जाते हैं तो उनके मन में जो देश प्रेम की भावना है उसी समर्पण के भाव को डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस कविता के रूप में ढाला है। तो आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लौ पर जब, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। हमारे BSF के जवान जो हमारे देश के सरहदों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये पंक्ति उनके लिए समर्पित है। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी ना रहे मगर इसकी सजधज आबाद रहे, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सब भारत माँ के गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं और हम सब मिलकर भारत माँ का जयगान करते हैं, इसीलिए तो कवि ने कहा है। गीता का ज्ञान सुने न सुने इस धरती का यश गान सुने, गीता का ज्ञान सुने न सुने इस धरती का यश गान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके भारत माँ का जय गान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये आया हूँ, चाहे अजान न सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में, जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में, जन मन में इस मन में उस मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलधि तरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 7वीं के प्रत्यु सामल को कि वे आए और हमारे सम्मुख कुछ मजेदार चुटकुले प्रस्तुत करें।
सोनू सोनू से मैंने कल चेक किया था कि कहीं मेरे शरीर में लोहा तो नहीं है। सोनू तुमने इसे कैसे चेक किया? मुनू मैंने इसके लिए एक मैग्नेट का इस्तेमाल किया, वो मेरे शरीर में कहीं पर भी नहीं चिपका। आयुष ने प्रत्युष से हम पानी क्यों पीते हैं? प्रत्युष क्योंकि हम खा नहीं सकते। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रत्युष। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 3री ब की छात्रा आकृति को कि वे आए और एक कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करें।
एक राजा था, उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैं इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाऊं तो फिर मैं हर काम को संपूर्ण कर सकता हूं। पहला प्रश्न यह था कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय में जो भी काम करो वो सफल रहता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन का सबसे मूल्य व्यक्ति है, और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो चीज़ हमारा मुख्य चीज़, कौन सा ऐसा काम है जो काम हमारा सबसे मुख्य है। राजा ने बोला जो भी इन प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसे कुछ दूंगा। इस सभी दूर दूर के मंत्री और दूर दूर के लोग आकर उस प्रश्नों का उत्तर देने लगे, लेकिन कोई भी उन प्रश्नों का समान समय उत्तर नहीं दे सका। उसके बाद राजा ने सोचा, अभी मैं क्या करूं? उसको याद आया कि एक ऋषि जंगल के अंदर रहता है और वह जंगल के बाहर कभी नहीं जाता। वो ऋषि बहुत सब कुछ जानता है और वो बहुत ज्ञानी भी है, इसीलिए वो अपने सैनिकों के साथ जंगल के अंदर गया। जंगल के अंदर जाने के बाद जाने के समय पर उसने अपने साथियों को बाहर रखा और फिर वो जंगल के अंदर निकल गया। उसने उस ऋषि को गड्ढा खोदते हुए देखा। उसने पूछा, प्रणाम। उसने बोला प्रणाम। ऋषि ने प्रणाम बोलकर अपना कार्य फिर से शुरू किया। राजा ने एक प्रश्न वो तीन प्रश्न बोलने लगा। उसके बाद वो ऋषि बहुत थक चुका था, रुक रुक कर काम कर रहा था, इसीलिए राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने ऋषि से बोला, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ऋषि ने राजा को बोला, हाँ धन्यवाद। राजा ने खुदाई करना शुरू किया। खुदाई करते करते एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे और चार घंटे बीत गए। उसके बाद उसने खुदाई रोकी और ऋषि को बोलने लगा, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मुझे बोल दीजिए ना साफ साफ, मैं घर चला जाऊँगा। उसके बाद उसको दिखाई दिया कि एक दौड़ता हुआ आदमी अपने पेट में हाथ रखे आ रहा था और वो उन दोनों के सामने ही गिर पड़ा। उन दोनों ने उसकी मसल पट्टी की और राजा ने ऋषि के सहायता से ऋषि के कुटिया में लेकर उसको खटिए के ऊपर सुला दिया। राजा चौकीदार की तरह कुर्सी में बैठ गया। बैठे बैठे उसको नींद आ गई, वो सो गया। उसके बाद जब वो उठा तब उसको कुछ पल के लिए याद नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद उसको वो आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बहुत ही धीरे आवाज़ से बोला, क्षमा करिए। उसके बाद राजा ने बोला, तुमने तो कोई पाप नहीं किया है और मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूं? उसके बाद उस आदमी ने बोला कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं, आपने मेरे भाई की पूरी दौलत सब कुछ हड़प लिया था। उसके बाद मैं बदले के आग में जल रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि आप ऋषि के पास आ रहे हो, इसलिए मैं आप मेरे खुफिया जगह में छुप गया, तभी भी आप नहीं आए, इसीलिए मैं अंदर गया, तभी मुझे आपके सैनिक दिखाई दिए और सैनिकों ने मुझे मेरे पेट में मारकर बहुत घायल पहुंचा दिया, इसी कारण मैं दौड़ते हुए इधर आ गया। अगर आपने मेरी मसल पट्टी ना की होती तो फिर मैं अभी तक बचता नहीं। उसके बाद राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी भाई के सारे दौलत दे दूंगा, धन्यवाद। उसके बाद मैं तुम्हें सारे चीज़ें दे दूंगा, ठीक है, बोलकर वो ऋषि के पास गया और बोलने लगा, मैं तो आपको यह बोलने वाला था कि मेरा प्रश्न का उत्तर दो लेकिन आपने तो मुझे रोक दिया, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऋषि ने बोला, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल चुका है। नहीं, क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर? मुझे नहीं मिला, क्या तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं? पहला, तुम जब गड्ढा खोद रहे थे वही तुम्हारा सबसे मूल्य समय है, क्योंकि अगर तुम मेरे ऊपर दया ना करके गड्ढा अगर ना खोदते तो फिर वो आदमी ना आता, अगर वो आदमी आता तो फिर भी मर जाता, वो भी तुम्हारे बदले के आग में, और फिर तुम सोचते कि मैं ऋषि के पास क्यों ना रुक गया होता। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है ना कि तुम्हारा सबसे मूल्य इंसान कौन है तुम्हारे जीवन का? तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्य इंसान मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें, अगर तुमने मेरे ऊपर दया ना की होती तो फिर ना ही तुम उसको देखते, उस इंसान को देखते और ना ही तुम उसकी मदद करते। और तीसरा प्रश्न तुम्हारा यह है ना कि मेरा सबसे मूल्य काम क्या है। तुम्हारा सबसे मूल्य काम है, तुम्हारा सबसे मूल्य काम है लोगों को बचाना और उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि तुम एक राजा का कर्तव्य निभा रहे हो। यही कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। धन्यवाद।
धन्यवाद आकृति। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 7वीं से अध्याशा को कि वे आए और हमारे विद्यालय की साप्ताहिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करें।
Many competitions were conducted under the banner of the school CCA department. In the primary wing, group song competition was conducted on patriotism. And in the secondary wing, the students from 6th to 8th had a greeting card making competition on patriotism, Independence Day and Azadi ka Amrit Mahotsav. The students from 9th to 12th had a bouquet making competition. The school is going to offer these cards and bouquets to the BSF Jawans of our area on Independence Day. Along with this, students from our school have also participated in the district level competitions for the celebration of Independence Day 2023. Students' Council was formed. The student leaders were investitured by our principal, Sri Arbind Biswal sir, with sachets, flags and designated badges. That was a grand celebration to witness. We thank Radio Koraput for giving us a platform to podcast our talents. Thank you.
धन्यवाद अध्याशा। आशा है कि आपको रेडियो केवीके का यह नवा अध्याय पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी रेडियो केवीके के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।